ये फरमा रहे हैं कि आपने अपने मुतादिद लेक्चर्स में ये फरमाया है कि जो मॉर्गेज है वो बिल्कुल ठीक है, वो कोई हराम या सूद नहीं है। ये कहते हैं रीमॉर्गेज का प्रोसीजर क्या है? अगर मैं एक हाउस अगर मैं मॉर्गेज लेता हूं लेकिन उस मकान की मालियत जो है वो फर्ज करें डबल हो जाती है, तो मैं वो इजाफा जो मुनाफा हुआ वो इजाफी मुनाफा लेकर मैं अलहदा हो सकता हूं और किसी और को सुपुर्द कर सकता हूं, क्या ये सूद होगा?
देखिए, मैंने जो बात वाजे करने की कोशिश की है वो ये है कि सूद का ताल्लुक कर्ज से होता है, कर्ज पर मनफत को सूद कहा जाता है।
ठीक।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इस्लाम ने ममनू करार दी है, ये हमेशा से ममनू रही है। इससे पहले अल्लाह ताला की शरीयत में, तौरात में, दूसरी किताबों में ऐसे ही इसको ममनू करार दिया गया है। कर्ज पर मनफत, कर्ज उन चीजों में होता है जो कंज्यूमेबल है, अपना वजूद खो देती हैं।
ठीक है।
जैसे मैंने आपसे रुपया लिया, इस्तेमाल करूंगा उसको, मैं उसकी वजूद को बाकी रख के इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपने वजूद को फना कर देगा, मुझे दोबारा उसे मेहनत करके पैदा करना होगा, आपको वापस करना होगा।
ठीक है।
इसी बुनियाद पर उसको ममनू करार दिया गया है। ये जो मकान आपने लिया है या आपने गाड़ी ली है, ये कोई कर्ज का मामला नहीं है, ये दर हकीकत बेउशरा का मामला है, खरीदो फरोख्त का मामला है। यानी बैंक ने एक घर खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, आपको उसने बेच दी। अब ये उसने बेची है आपको बाद में पेमेंट के वसूल पर।
ठीक है।
आपके पास पैसे नहीं थे, उसने आपको ये रियायत दी कि आप इसकी किस्तों में अदायगी कर सकते हैं।
ठीक है।
यही है ना?
यही है। ठीक है।
अब आपके साथ एक बेउशरा का मायदा हो गया। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इसका सूद से कोई ताल्लुक नहीं है। सूद उन चीजों में होता है जो कंज्यूम हो जाती हैं, ये यूजेबल चीज है। और ये मामला जो आप कर रहे हैं, ये कर्ज लेने देने का मामला नहीं कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त का मामला है। मैंने इसको मिसाल से भी समझाया लोगों को कि मेरा एक मालिक मकान है, मैं किराए पर रहता हूं मिसाल के तौर पर, वो मुझे ये कहता है कि देखिए आप किराया भी देते रहिए और आज इसकी कीमत तय कर लीजिए मकान की, और ये कीमत भी बिलक साथ मुझे देते रहिए।
ठीक।
जब ये रकम पूरी हो जाएगी उसके बाद ये मकान भी आपका हो जाएगा, इसमें कोई जुल्म का सवाल ही नहीं है। ये चीज की खरीदो फरोख्त बड़ा गैर मामूली मामला है। तो बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त बैंकारी के निजाम ने पैदा कर दी। एक सहूलत है जो लोगों को हासिल हुई है, इसमें कोई ममनू चीज नहीं है। ऐसी बातों के बारे में मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि सूद ममनू है, हराम है, उसको कोई हलाल नहीं करार दे सकता। ये जो बहस हम कर रहे हैं ये इतलाक की बहस है, यानी कौन सी चीज है कि जिस पर अल्लाह के इस हुक्म का इतलाक होता है, तो इस पर इसका बिल्कुल इतलाक नहीं होता, ये बिल्कुल जायज है। इसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि आपको एक मजीद सहूलत ये दी जाती है कि अगर आप किसी मौके पर इस मकान को बेचना चाहें, यानी एक चीज मेरे और आपके दरमियान तय हो गया कि ये हमने खरीदो फरोख्त कर ली है, लेकिन जाहिर है कि मेरी मलकियत अभी ताम नहीं हुई, मुझे अभी वो रकम अदा करनी है, 5 साल में करनी है, 10 साल में करनी है, 20 साल में करनी है, तो मलकियत का मामला भी ताम नहीं हुआ। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि मालिक मकान मुझसे ये कहता है, जो इस वक्त बैंक है, कि इसको बेच भी सकते हैं और इसमें अगर आपको कोई जायद पैसे मिलते हैं तो अच्छी बात है, यानी ये सूरत हाल जो माहदे की है, जो दूसरे आदमी को मुंतकिल हो जाएगी, वो जायद आप ले लीजिए, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ये असल में बुनियादी तौर पर मामला ही बिल्कुल जायज है, ये हल्लल्लाहुल बै है, यानी अल्लाह ताला ने आपके लिए जायज करार दिया है कि आप बै और शरा के मामलात करें, सही उसूल पर करें, इसमें किसी तरह की भी कोई काबिल एतराज बात नहीं। तो जो सवाल इन्होंने किया है उसकी रूह से मॉर्गेज अपनी असल में बिल्कुल जायज है, अगर उसमें यह सूरत पैदा होती है तो ये मजीद एहसान है, यानी आप घर बेच सकते हैं, अगर उससे कोई मनफत हासिल होती है तो आप ले भी सकते हैं।
ठीक। जावेद साहब, ये जो आपने फरमाया, जो आप अक्सर ये बताते हैं यूजेबल और कंज्यूमेबल वाली जो टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो दीन फहमी है उससे आपने निकाली है, या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज की है यूजेबल और कंज्यूमेबल वाली जो टर्म?
हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि सूद का मामला ऐसा नहीं है कि सूद क्या होता है ये दीन ने तय किया है, ये दुनिया ने हमेशा से तय कर रखा हुआ है। यानी किराया जायज है, आप जानते हैं ना,
जी जी,
किराए के बारे में कोई बहस है कि वो नाजायज है? आप मकान का किराए पर देते हैं, आप होटल किराए पर देते हैं, आप गाड़ी किराए पर देते हैं, कभी किसी ने कहा कि ये नाजायज?
नहीं।
क्यों, वजह क्या है? यानी रुपया किराए पर नहीं दिया जा सकता, तो रुपये का किराया सूद है। अगर आप ये कहें कि क्यों, वजह क्या है उसकी, इसलिए ये तो समझाने के लिए लोगों को बताया गया है कि वो चीजें जिनमें कर्ज का मामला होता, आप कहते हैं कि ये मकान मैंने कर्ज लिया है, जब आप किराए पे लेते हैं, ये गाड़ी मैंने कर्ज ली है, मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरी जगह पर जाएं, आप लंदन गए हैं, वहां जाके आप एक कार ले लेते हैं किसी आदमी से ताकि आपको 10 दिन गुजार सकें, क्या कहते हैं, ये कार आपने कर्ज लिया या किराए पर ली है?
किराए पर ली है।
کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہم ظاہر ہے
آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز
exactly.
ہے. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ مکان بیچ رہے ہیں، جب آپ گاڑی بیچ رہے ہیں، جب آپ سائیکل بیچ رہے ہیں، جب آپ موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، جب آپ میز بیچ رہے ہیں، تو اصل میں آپ ایک چیز کے بیع و شراء کا معاملہ کر رہے ہیں. سود کا تعلق اس سے ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں اگر کوئی استعمال کا معاوضہ لیا جاتا ہے تو وہ کرایہ ہو جاتا ہے اس چیز کا. یعنی چونکہ ابھی میں نے آپ کو پورے پیسے نہیں دیے ہیں، ملکیت میں آپ بھی ابھی شریک ہیں، تو آپ اپنے حصے کا کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ سادہ بات ہے.
لیکن یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کرایہ بالکل ہے، لیکن جب میں کرایے پہ کوئی چیز لیتا ہوں، میں نے گاڑی کرایے پہ لی، تو مالک مکان، میں نے آپ سے اگر گاڑی لی تو اس کا جو ملکیت ہے گاڑی کی وہ آپ کی ہے. تو اگر اس گاڑی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کوئی مینٹیننس ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ذمہ ہے. جبکہ ہم جب مکان لیتے ہیں بینک سے اور اس کی ملکیت بینک کے پاس ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری میری ہوتی ہے. یہ اس طرح کے معاملات پھر ذرا
وہی کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. یہ تو آپ کے اور مالک مکان کے درمیان معاہدہ ہے. میں نے کئی مرتبہ بعض معاہدات کیے ہیں مالک مکان کے ساتھ جس میں اس طرح کی ساری ذمہ داری اس نے مجھ پر ڈال دی. یہ کوئی جائز ناجائز کا سوال نہیں ہے.
آپ کی جو بھی معاملات
کنڈیشن ہے، یعنی آپ نے کیا ذمہ داری لینی ہے، انہوں نے کیا ذمہ داری لینی ہے، اس کے لیے دین نے کوئی چیز طے نہیں کی ہوئی. یہ آپ کے معاہدے آپ کی شرائط سے متعلق ہے، وہ شرائط منصفانہ ہونی چاہیے. تو یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کی رقم ادا کرنی ہے اور آپ کو یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اگر اس معاہدے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا اس طرح کا معاملہ ہوگا، ذمہ داری آپ کی ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. یہ اصل میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سرے سے کوئی سود کا معاملہ ہو ہی نہیں رہا. سود کے معاملے کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، خرید و فروخت سے نہیں ہوتا. خرید و فروخت میں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ معاہدہ منصفانہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں تو احسان ہو رہا ہے دوسرے آدمی کی طرف سے، اس لیے کسی طرح کا بھی اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا.